पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र दिशा के बारे में पता करने के लिए अमन को कहता है और खुद रूही से मिलने कॉलेज पहुंचता है। वहीं देवांश दिशा और पवन को साथ देखकर गुस्से में आपा खो देता है। रूही रूही को धमकाता है कि वो उससे दूर ना जाए और किसी को भी उसके बारे में ना बताए, अन्यथा वो उसे मिलने नहीं देगा। रूही के मना करने पर रुद्र उसे चेतावनी देता है और उसे बताता है कि वो हमेशा उसकी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ मिशा और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। मिशा को रुद्र से शादी करने का प्रस्ताव मिला है, लेकिन वो रुद्र को पसंद नहीं करती है और सिर्फ उसके पैसे और रुतबे के लिए शादी कर रही है। देवांश के ऑफिस में दिशा पवन से बात कर रही होती है और फिर खाना लेकर देवांश के केबिन में जाती है, जहां उसे कुछ अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 35। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ देवांश के केबिन में दिशा जैसे ही देवांश के केबिन के अंदर कदम रखती है, वैसे ही वे देखती है कि केबिन की हालत थोड़ी बिखरी हुई है और ग्लास टूटने की वजह से कांच इधर उधर फैला हुआ है, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि उसके जाने के बाद कुछ ही देर में ऐसा क्या हो गया जो देवांश ने अपने केबिन की इतनी बुरी हालत बनाकर रखती हुई है। जबकि देवांश को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद, फिर भी वे अपने केबिन में फाइल इधर से उधर और टूटे हुए ग्लास को इस तरह फैला कर रखा हुआ है, जिसे एक नज़र जमीन पर सारे सामानों को देखती है जो बिखरा हुआ था। उसके बाद वे देवांश की तरफ देखती है, जो अब भी अपनी चेयर पर बैठे अपनी जलती निगाहों से उसे ही देख रहा था, जिसे देख दिशा डर सी जाती है। फिर भी वे जमीन पर देखते देखते केबिन के अंदर जाती है और खाने की ट्रे को वहीं टेबल पर रख देती है। फिर बिना कुछ कहे वहां पर गिरी हुई फाइलों को उठा उसे एक एक कर देवांश के टेबल पर रखती है। उसके बाद उस टूटे हुए कांच के ग्लास को बड़े ध्यान से एक एक कर एक प्लेट में धीरे धीरे कर उठाने लगती है। वहीं देवांश, जो कब से दिशा की हरकतें देख रहा था, उसे उस टूटे हुए कांच के ग्लास को उठाते देखता है तो अचानक ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वे दिशा को देखते हुए अपने मन में बोला, गुड गर्ल, तुम्हें बहुत शौक है ना बैड गर्ल बनने का, मेरे रहते हुए किसी दूसरे लड़के से हंस हंस कर बात करने का। आज मैं तुम्हारे सारे शौक निकाल दूंगा। गुड गर्ल, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हें उस लड़के के बात करता हुआ देख मुझे कितना दर्द हो रहा था गुड गर्ल, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैं उस दर्द का एहसास तुम्हें जरूर करवा सकता हूँ। आखिर तुम्हें भी पता चलना चाहिए गुड गर्ल कि जब किसी को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। इतना बोल वे चेयर से उठ अपने कदम दिशा की ओर बढ़ा देता है। वहीं दिशा, जो कांच के टुकड़े को काफी ध्यान से उठा रही थी कि उसे वे कांच चुभ ना जाए, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि दिशा की एक दर्द भरी चीख उस पूरे केबिन में गूंज उठती है। वहीं दूसरी तरफ क्लब के प्राइवेट रूम में विपुल मिशा को लेकर अपने रूम में पहुंचता है और उसे बेड पर आराम से लेटा खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देख मिशा मुस्कुराने लगती है। फिर विपुल के कॉलर को पकड़ उसे अपने और करीब खींच उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगती है, जिसे देख विपुल भी एक्साइटेड हो जाता है और मिशा को डिप किस करने लगता है। कुछ देर यूं ही किस करने के बाद विपुल मिशा के होंठों को छोड़ उसके गले और क्लीवेज पर किस करने लगता है, जिसके मिशा आहें भरने लगती है। कुछ देर बाद जब मिशा को और कंट्रोल नहीं होता तो वे विपुल के चेहरे को पकड़ बोली, विपुल बेबी, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता, प्लीज इसके आगे बढ़ो। मिशा की बात सुनकर विपुल मिशा के गले पर बाइट करते हुए बोला, जैसा तुम बोलो मिशा बेबी। इतना बोल वे मिशा के सारे कपड़ों को उसके शरीर के एक एक कर अलग करता है और खुद के भी सारे कपड़े अलग कर जमीन पर फेंक मिशा के साथ वाइल्ड होने लगता है, जिसके उस कमरे में मिशा की सिसकियां गूंजने लगती हैं। मिशा को किस करते करते जब उसके भी कंट्रोल नहीं होता तो वे भी मिशा के अंदर एक झटके में समा जाता है, जिसके मिशा की हल्की चीख निकल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वे भी ये सब इंजॉय करने लगती है और विपुल का साथ देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक पार्क में, जहां काफी कम लोग थे, जिस वजह से ये रूही की फेवरेट जगह भी थी, वहां रूही अकेली बैठी आज के रुद्र के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। साथ ही साथ उसकी आंखें भी हल्की नम थी, क्योंकि रुद्र उसके साथ जिस तरह का बिहेव करता था वे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वे रुद्र के बिहेवियर के बारे में सोचते हुए खुद से ही बोली, ये परी के भाई मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, क्यों वे मुझे परेशान करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं उनसे मिली थी तब मैंने उस आदमी को वहां से भागने में मदद की थी, उस वजह से शायद उनका नुकसान हो गया हो, शायद इसलिए ही वे हमेशा मुझे परेशान करते हैं और मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, वे मुझे उस आदमी को भगाने की सजा देना चाहते हों। हाँ, ऐसा ही है, वरना मेरा उनके क्या दुश्मनी हो सकती है। मैं तो उस दिन पहली बार उनसे मिली थी और उसके बाद से ही ये मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर वे मुझे दोबारा परेशान करेंगे तो मैं उनसे उस आदमी को भगाने के लिए माफी मांग लूंगी, क्योंकि मुझे इन बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं अब परी से भी दूर ही रहूंगी, सिर्फ उसके कॉलेज में ही मिलूंगी, उसके घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, वरना वे फिर से मुझे परेशान करेंगे। इतना बोल वे अपनी आंखों में से नमी को साफ कर अपनी आंखें बंद कर उस हवा को महसूस करने लगती है, जिसके उसे काफी ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। तभी उसे अपने कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वे अपनी आंखें खोल उस तरफ देखती है जहां से आवाज आ रही थी। उस तरफ एक छोटा सा 8 साल का बच्चा दौड़ते हुए इधर उधर भाग रहा था, जिसे देख उसके मम्मी पापा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये नजारा देख जहां रूही के होंठों पर मुस्कान थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी आंखों में एक खालीपन भी था, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उस बच्चे की तरह उसके भी मम्मी पापा होते। वो भी इसी तरह इधर उधर भागती और नखरे करती, जिसके उसके मम्मी पापा उसे बात बात पर पैंपर करते, उसे प्यार से समझाते और गलती करने पर डांट भी लगाते। पर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी अपने मम्मी पापा को नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि उसके मम्मी पापा कौन हैं। उसके दिल में हमेशा एक दर्द रहता था कि क्या वो इतनी बुरी है जो उसके मम्मी पापा उसके पैदा होते ही उसे अनाथाश्रम में छोड़ गए। अगर उसे कभी भी अपने मम्मी पापा मिले तो वे उनकी ये एक सवाल जरूर पूछना चाहेगी कि उसकी ऐसी क्या गलती हो गई कि उन्होंने उसे अपने से दूर कर दिया। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों के आंसू कब बहने लगते हैं वे उसे भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर अपने आंसुओं को साफ करते हुए वे अपनी घड़ी में टाइम देखती है और खुद से कहती है,
कोई बात नहीं रूही, तुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तू खुद के लिए काफी है। बाकी दिशा दी तो है तेरी हर कमी को पूरा करने के लिए। इतना बोल वे मुस्कुराते हुए वहां से ऑटो ले अनाथ आश्रम के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ देवांश के कैबिन में